क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें। आंसर, वस्तुतः प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल मेहराब का मुख्य प्रस्तर है तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन इस आधार पर ही किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री को मंत्रियों की नियुक्ति तथा पदच्युति का अधिकार दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यह कहा गया है। अनुच्छेद 74(1) में यह उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के संचालन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति वास्तव में मंत्रिपरिषद ही है। मंत्रिपरिषद ही भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल एक इकाई होती है जो शासन व्यवस्था का संचालन करती है। संविधान में मंत्रिमंडल की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति के समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। कार्य, पहला, राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना है। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। मंत्रिमंडल द्वारा अपनाई गई नीति के आधार पर ही समस्त प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। दूसरा, कानून निर्माण पर नियंत्रण। संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण मंत्रिमंडल का कार्य क्षेत्र नीति निर्धारण तक ही सीमित नहीं है। वस्तुतः इसके द्वारा कानून निर्माण के कार्य का भी नेतृत्व किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा नीति निर्धारित कर दिए जाने के बाद इसके द्वारा ही विधि निर्माण का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं। अध्यादेश जारी करने व पदत व्यवस्थापन के कारण तो मंत्रिमंडल की कानून निर्माण की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तीसरा, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। सिद्धांततः संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभाग के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। मंत्रिमंडल ही आंतरिक प्रशासन का संचालन करता है और देश की समस्त प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है। चौथा, मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। प्रशासनिक सुविधा के लिए सरकार को विभिन्न विभागों में विभाजित कर दिया जाता है, लेकिन इन विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है और सुशासन के लिए विभिन्न प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय नितांत आवश्यक होता है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल विभिन्न विभागों को अधिकाधिक पारस्परिक सहयोग के लिए प्रेरित करता है। इसी उद्देश्य मंत्रिमंडलीय समितियों को स्थापना की जाती है। पांचवा, वित्तीय कार्य। देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का ही होता है। इस हेतु उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख देश की संभावित आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही वित्त मंत्री तैयार करता है। वित्त मंत्री ही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अन्य समस्त विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। छठा, वैदेशिक संबंधों का संचालन। भारत के वैदेशिक संबंधों का संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। इसके द्वारा युद्ध तथा शांति संबंधी घोषणाएं की जाती हैं और इस बात का निर्णय किया जाता है कि दूसरे देशों के किस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाएं। मंत्रिमंडल समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार कर आवश्यक निर्णय लेती है। सातवां, नियुक्ति संबंधी कार्य। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के सलाह या सिफारिश के द्वारा ही की जाती है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों को मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सेना के सेनापतियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही की जाती है। अन्य कार्य, ए, अपराधियों को क्षमा प्रदान करने के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करना। बी, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आदि उपाधियां प्रदान करने के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करना। वास्तव में मंत्रिमंडल वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक यंत्र घूमता है। यह सर जॉन मैरिट के अनुसार कहा गया है।